प्यारे छात्रों नमस्ते। अपन बात कर रहे थे अलंकार की, और अलंकार के बारे में अब तक अपने अलंकार की परिभाषा, अलंकार का मूल अर्थ और उसके साथ साथ अलंकार के भेद, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। फिर शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन अलंकार अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ये जाना कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में भी बहुत सारे उदाहरण आपने देखे, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल। इस वाक्य में चय वर्ण की और लय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, यमक की बात की थी, तो यमक में आपने ये जाना, परिभाषा में यह देखा कि जहाँ एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग या भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काल घटा का घमंड घटा, यानी घटा शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ पृथक पृथक है। काली घटा यानी काले काले बादल, घमंड घटा यानी कम हुआ। उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आवृत्ति हुई है, जिसमें पहले वाले का अर्थ है ऊंचे ऊंचे महलों में, और दूसरे वाले ऊंचे घोर मंदिर का मतलब है गहरी गहरी गुफाओं में। तो इस प्रकार जहाँ एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और तीसरा अलंकार श्लेष, जो कल पढ़ा था, जिसमें आपने परिभाषा में ये देखा कि जहाँ एक ही शब्द का विभिन्न प्रसंगानुसार या संदर्भानुसार अनेक अर्थ निकलते हैं या चिपके हुए रहते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबले मोती मानस चोर, पानी शब्द का मोती के संदर्भ में, मानस इन मनुष्य के संदर्भ में, चून इन चूना या आटे के संदर्भ में, तीन अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे मोती के अर्थ में पानी का मतलब है चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत और चूने के अर्थ में साधारण चल। तो ये तीनों अलंकार अपन पढ़ चुके हैं। आज बात कर रहे हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार की परिभाषा में आपने यही देखा कि जिस उक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में जो सबसे पहला बिंदु है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को समझने से पहले अपन को दो तीन शब्दों के अर्थ जानने जरूरी है, क्योंकि अर्थालंकार में ये दो तीन शब्द हैं जो बार बार हर अलंकार की परिभाषा में आएंगे, और जब तक आप इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उसकी परिभाषा समझ नहीं पाएंगे। तो उपमा अलंकार को समझने से पहले आपको उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चार शब्दों को समझना होगा, इन चारों का अर्थ जानना होगा। तो सबसे पहले उपमेय की बात करते हैं, तो उपमेय का मतलब होता है वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, उस वस्तु को उपमेय कहते हैं। उपमेय अर्थात वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वह वस्तु जिससे तुलना की जाए। उपमेय वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, उपमान वह वस्तु जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द वह शब्द जिससे तुलना प्रकट की जाए, अथवा उपमेय उपमान के बीच संबंध स्थापित किए जाए, तो वो शब्द है वो वाचक या योजक शब्द कहलाते हैं। और चौथा जो बिंदु है वो है साधारण धर्म, यानी जिस गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान की तुलना की जाए तो वो गुण साधारण धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से उपमेय और उपमान इन दो शब्दों को समझना जरूरी है ताकि आप अर्थालंकार के जितने भी भाग हैं, चाहे वो उपमा है, चाहे रूपक है, चाहे उत्प्रेक्षा है या अन्य है, वो समझ पाएंगे। तो उपमेय का मतलब है वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब है वह वस्तु जिससे तुलना की जाए। तो इस प्रकार उपमा की परिभाषा आप दे सकते हैं, जब किसी विशेष गुण, नोट कर सकते हैं आप उपमा की परिभाषा, जब किसी विशेष गुण या स्वभाव की समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। या दूसरे रूप में आप लिख सकते हैं कि उपमेय की उपमान से रूप, गुण, आकार, प्रकार की समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। वापस देखिए, जहाँ उपमेय की उपमान से रूप, गुण एवं आकार प्रकार की समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, उदाहरण सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह। वापस सुनिए, सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह, ये वाक्य है और इसमें उपमा अलंकार है। अब इस वाक्य में या निर्वासित राम का उत्साह सिंधु अर्थात समुद्र के समान विस्तृत एवं अथा बताया गया है। उपमेय उत्साह को उपमान सिंधु का विस्तृत बताया गया है और इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारु, अम्ल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारु, अम्ल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। अर्थात उक्त उदाहरण में आँखों उपमेय के लिए हिरणी, मीन और खंजन तथा कमल की उपमान लाए गए हैं। अतः एक साथ चार वस्तुओं से तुलना कर नायिका की आँखों की सुंदरता बताई गई है और इस प्रकार इस वाक्य में भी उपमा अलंकार है। साथ ही एक नोट करके आप लिख सकते हैं, यदि उदाहरण आपको समझ में न आए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में या तीन प्रकार से अलंकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो सीधी परिभाषा पूछी जाएगी या दो अलंकारों के बीच में अंतर पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यमक और श्लेष में क्या अंतर है, या उदाहरण दिया हुआ होगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है परिभाषित कीजिए। तो पहचान के लिए आप नोट करके लिख सकते हैं कि जहाँ पर सा सरीस, सम समान, समय। वापस सुने, सा सरीस, सम समान, समय आदि शब्द आए यानी आदिवाचक शब्द आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे अभी अभी मैंने दो उदाहरण आपको बताए थे, उन उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं कि सिंधु सा विस्तृत और अथा सा वाचक शब्द आया है तो इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। दूसरे उदाहरण में हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारो, अब समान वाचक शब्द आया है और इस कारण इसमें भी उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार ये उपमा अलंकार है वो समाप्त होता है। उपमा में सबसे पहले आपको उपमेय और उपमान को जानना जरूरी है। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए, अर्थात उपमेय की उपमान से रूप गुण तथा आकार प्रकार से समानता बताई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। धन्यवाद। इसी के साथ ये बिंदु है वो समाप्त।